भागवत सार की श्रृंखला में छठे स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय पर चर्चा है, तो इसके एक श्लोक को दोहराएंगे। कोटि क्रमोनुवर्तन्त्या स्वभावं इह योषितः धिक्मां बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः कोति क्रमोनुवर्तन्त्या स्वभावं इह योषितः धिक्मां बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः कोटि क्रमोनुवर्तन्त्याः स्वभावं इह योषितः धिक्मां बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः। अतिक्रमः पाप अथवा दोष अनुवर्तन्त्याः अनुसरण करते हुए स्वभावं उसकी प्रकृति इह यहाँ योषितः स्त्री का धिक्कार है मां मुझको बत हाय अबुधम अपरिचित स्व अर्थे अपने लाभ के हेतु यह क्योंकि अहम मैं तू निसंदेह अजित इंद्रियः अपनी इंद्रियों को वश में करने में अशक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोष नहीं दिया जा सकता। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी जान ना पाया कि मेरी भलाई किस में है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तात्पर्य, स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। वह अपने पति को जिह्वा, उदर तथा उपस्थ की तुष्टि द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है और पेट भरने पर पुरुषेंद्रियां प्रबल हो उठती हैं। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसी तामसी वस्तुओं का आदि होता है तो वह निश्चित रूप से विषयोन्मुख हो उठता है। यह समझ लेना चाहिए कि यह विषयोन्मुखी प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है, आत्मोन्नति का नहीं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में गृहस्थ होना अत्यंत संकटपूर्ण है। जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित ना हो और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामिनी ना हो, पति को जीवन के प्रारंभ में ही इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी को भागवत धर्म में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वह भी भक्ति का पालन करे तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कलयुग में दाम्पत्य भी रुचि हेतु पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहें, उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यंत घातक होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन निस्तार कमद भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अति नीचोच तह कर हान मुंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। छठे स्कंद के अंतिम दो अध्याय हैं, 18 और 19वें अध्याय। अभी तक हम लोग वृत्रासुर की कथा सुन चुके हैं और अब इन दो अंतिम अध्यायों में संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्रासुर की कथा से संदेश आया कि कैसे हमें गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को अपने जीवन में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति वे करें। और अब इन दो अध्यायों में आसक्ति होने से क्या नुकसान होता है इसका वर्णन करा जा रहा है। इस अध्याय में गृहस्थ जीवन के खतरों का वर्णन है और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का भी वर्णन है कि गृहस्थ जीवन कितना भक्ति की दृष्टि से, वैसे तो भक्ति ही नहीं, वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से कितने खतरे हैं गृहस्थ जीवन में। अर्थात बहुत सरल है व्यक्ति के लिए अपनी इंद्रियों के वश में आ जाना, बहुत सरल है व्यक्ति के लिए ऐसे घृणित कार्य करना जो बड़े निंदनीय हैं शास्त्रों में। तो इसीलिए इन अध्यायों में दीति की कथा के द्वारा, दीति और कश्यप मुनि की कथा के द्वारा इस संदेश को दिया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में कैसे व्यक्ति को पूर्णतः अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये उद्देश्य नहीं है गृहस्थ जीवन का तो फिर केवल समय की बर्बादी है, इंद्रियों को वश में व्यक्ति कर नहीं पाएगा और घृणित पाप तक कर बैठेगा जानते हुए कि वो पाप कर रहा है। जैसे यहाँ पर कश्यप मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं वश में नहीं कर पाया अपनी इंद्रियों को। तो ये अध्याय का प्रारंभ हुआ। अब ये प्रश्न आता है कि हम लोग तो वृत्रासुर की कथा सुन रहे थे, महाराज चित्रकेतु को श्राप मिला, पार्वती देवी ने श्राप दिया, तो अब अचानक ये दीति की कथा कैसे आ गई? और क्या जो भी याद आया सुखदेव गोस्वामी को, सुत गोस्वामी को, उन्होंने कह दिया? नहीं, आपको स्मरण होगा कि छठे अध्याय में वृत्रासुर की कथा प्रारंभ हुई थी 7वें अध्याय से, जब इंद्र ने अपराध किया था गुरु के प्रति। छठे अध्याय में वर्णन किया जा रहा था दक्ष की पुत्रियों का कि कैसे उनकी वंशावली हुई। तो अदिति के पुत्रों का वर्णन हो रहा था, अर्थात आदित्यों का, 12 आदित्य हैं विवस्वान से प्रारंभ होकर, जिनमें एक त्वष्टा भी हैं। तो हरेक का वो वर्णन कर रहे थे, इनकी पत्नी से ये पुत्र उत्पन्न हुए, फिर इनकी पत्नी से ये पुत्र उत्पन्न हुए, और फिर त्वष्टा की एक पुत्री पत्नी रचना का वर्णन किया और उनसे विश्वरूप उत्पन्न हुए। और कहते हुए वहां पर शुकदेव गोस्वामी ने कह दिया कि विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया जब बृहस्पति उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन्होंने अपराध किया। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि ये कैसे हुआ, कैसे गुरु ने उनको त्याग दिया, उसको बताइए। तो फिर सारी वृत्रासुर की कथा हो गई और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्यों का ही वर्णन वो आगे बढ़ाते हैं। आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र, दैत्य अर्थात दीति के पुत्र, दोनों बहनें हैं, लेकिन जो दिति के पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए, जो आदिति, इसको बंद कर दो, ये साउंड फटता है इससे, स्विच। हरे कृष्ण, ये ठीक है। जो दिति के पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए, तो दिति के पुत्रों का भी वर्णन होगा, लेकिन आदित्यों का पहले फिर वर्णन करने लगे, जहां वो छोड़ चुके थे त्वष्टा के आगे, फिर आगे जितने आदित्य हुए इस अध्याय के प्रारंभ से, सुखदेव गोस्वामी फिर उनका वर्णन करते हैं कि किसका विवाह किसके साथ हुआ, कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें कई वर्णन आते हैं। जैसे वर्णन आता है भगवान वामन देव का, वशिष्ठ मुनि का, भृगु मुनि का, इन सब का जन्म हुआ इत्यादि, ये सारे वर्णन वो कर रहे हैं। और फिर ये वर्णन करने के बाद तो उन्होंने ये छठे अध्याय के बाद से प्रारंभ रखा, बीच में केवल वृत्रासुर की कथा आई, अब आगे। और फिर उनके वर्णन करते हुए वो ये भी कहते हैं कि किस तरह भृगु मुनि इत्यादि का वर्णन कर दिया और आदित्य का हो गया, अब दीति दीति का वर्णन करने लगे। तो पहले अदिति का हुआ, अब दीति। तो उन्होंने कहा दीति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनको हम लोग सुन चुके हैं कथा उनकी, तो उसके दो पुत्र हुए थे। और फिर अलग अलग उन्होंने वर्णन किया कि हिरण्यकशिपु के पुत्र, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु के चार पुत्र हुए, तो उनका वर्णन किया, समलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद, ये चार पुत्र थे कयाधु के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उनके चार पुत्र हुए, और चारों पुत्रों का उन्होंने वर्णन किया कि कैसे उनके अलग अलग पुत्र हुए, जैसे प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, बलि महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर, बाण जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, इतना बड़ा कि शिव जी, ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते कि आज भी शिव जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, वो जिस स्थान पर रहता है। तो ऐसे ये वर्णन कर रहे थे, और करते करते जब ये दिति के पुत्रों का वर्णन करने लगे तो उसमें उन्होंने मारुतों का भी वर्णन किया कि दिति के पुत्र हालांकि दैत्य कहलाते हैं, लेकिन दिति के 49 पुत्र हुए, 49 मतलब 49, आप लोग समझेंगे नहीं इसीलिए बता। सो उनके 49 पुत्र हुए, और मारुत थे ये देवता हुए, उन्होंने कहा। तो जब सुखदेव गोस्वामी से ये सुना परीक्षित महाराज ने कि बाकी सारे तो वर्णन कर रहे आ रहे असुर हुए, बाणासुर, प्रहलाद वगैरह सब दैत्य परिवार में उत्पन्न हुए, तो दैत्य कहलाए, लेकिन ये देवता कैसे हो गए? देवता तो केवल आदिति के पुत्रों को बनाया जाता, तो फिर ये मारुत थे ये देवता कैसे हुए? तुरंत सुखदेव गोस्वामी को रोक दिया उन्होंने। तो अभी वो वर्णन कर रहे थे कि दिति के और इतने पुत्र हुए, तो तुरंत उन्होंने पूछा। देखिए ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुनने की उत्कंठा या सुनने का तरीका है, कि जब हम सुने भागवत को, विशेष करके जैसे परीक्षित महाराज सुन रहे, अगर लाभ लेना है परीक्षित महाराज की तरह, तो परीक्षित महाराज की तरह सुनना चाहिए। मतलब केवल ऐसे नहीं कि बैठना है, समय कितना हुआ, घड़ी देखना, कहाँ घड़ी देख रहे थे परीक्षित महाराज कि कितना हो गया समय, प्रसाद का समय हुआ या नहीं हुआ इत्यादि। परीक्षित महाराज बड़ी ध्यान से सुन रहे थे जरा जरा सी बात। जैसे उन्होंने सुना कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, रोक दिया, पहले विस्तार से बताइए। यहां सुना कि जो मारुत हैं, हालांकि दीति पुत्र हैं, दैत्य होना चाहिए, लेकिन वो देवता बन गए, वो देवताओं की श्रेणी में आए, तुरंत रोक दिया। कैसे हो गया ये? ये दीति के पुत्र दैत्य होने चाहिए स्वभाव से, तो फिर कैसे वो देवता हो गए? तो फिर उसकी कथा सुखदेव गोस्वामी समझाने लगे। तो देखिए ये वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी ने जब ये सुना उनका प्रश्न, तो बड़े प्रसन्न भी हुए सुखदेव गोस्वामी। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उनको पता चला कि ये जो सुन रहा है श्रोता मेरा, जो है सुनने वाला मेरा जो शिष्य, बड़े ध्यान से सुन रहा है, आंखें बंद करके सो नहीं रहा है। कारण एक भी हो सकता है कि परीक्षित महाराज ने कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए आंखें बंद नहीं हो रही थी। यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेकर आते हैं तो स्वाभाविक है आंखें बंद हो जाती हैं। तो बड़े बड़े प्रसन्न थे सुखदेव गोस्वामी कि इतने ध्यान से छोटी छोटी बात को पूछ रहे, अरे ये कैसे दिन? तो हम लोग तो सुनते हैं छोड़ देते हैं, कहाँ ध्यान रहता है। हाँ दीति के पुत्र हुए, वो देवता हुए इत्यादि इत्यादि, लेकिन तुरंत मतलब कितने ध्यान से सुन रहे थे इन बातों को भी, किसका कौन पुत्र हुआ क्या बना वो भी ध्यान से वो सुन रहे थे। तो फिर उन्होंने इतिहास कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दरअसल जब हिरण्यकश्यप को मार दिया, हिरण्यकश्यप दोनों पुत्र मारे गए, भगवान ने वध कर दिया, तो दीति बहुत दुखी हुई क्योंकि दोनों पुत्र मारे गए उसके। तो दीति ने सोचा कि ये जो इंद्र है ये बहुत ज्यादा भौतिक भोगों में आसक्त है। दीति ने भगवान विष्णु को निंदा नहीं की, भगवान विष्णु के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने मेरे पुत्रों को धोखे से मार दिया, एक को तुम्हारा वो वराह बनकर आ गए, दूसरे को खंभे में से निकल कर मार दिया, तो उन्होंने उनको दोष नहीं दिया, भगवान को वो जानती है, वो भगवान की भक्त है। लेकिन उन्होंने दोष दिया इंद्र को कि इंद्र ने भगवान का सहारा लिया अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सिंहासन को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए। दीति कहती है शरीर क्या है, वैसे भी शरीर जब मृत हो जाता है एक दिन तो मरना ही पड़ता है सबको, दीति कहती है, तो वैसे भी जब ये शरीर चला, शरीर मृत हो जाता है तो उस समय क्या रह जाता है, कीड़े मकोड़ों में परिवर्तित, कीड़े मकोड़े इसको खा लेते हैं या फिर राख बन जाता है। फिर ऐसे शरीर के लिए द्वेष करना दूसरों से, ऐसे शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरों से द्वेष करके उनकी हत्या करना, उनके प्रति हिंसा करना, ये सही नहीं है। इसलिए दीति ने सोचा कि इंद्र को सबक सिखाना चाहिए, मेरा ऐसा पुत्र होना चाहिए जो इंद्र का वध करे। तो एक दृष्टि से तो वो सोच रही थी कि अपने शरीर की रक्षा के लिए ये ठीक नहीं दूसरों के प्रति, लेकिन कर क्या रही है, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो वो उसको मारे। ये भौतिक जगत है, देखिए व्यक्ति ज्ञान बहुत दे सकता है, बड़े बड़े प्रवचन दे सकता है, अगर दीति का वो श्लोक सुने दो श्लोकों में जो उन्होंने कहा तो बहुत सुंदर प्रवचन है भगवत गीता का, दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोकों के बीच में जो भगवान ने दिया वही वो बता रही हैं, ये शरीर समाप्त हो जाने वाला है इसके लिए क्यों चिंता करना। लेकिन तुरंत क्या सोचा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। तो प्रश्न आता है कि अगर आप जानते हो कि ये शरीर नश्वर है, आपका भी शरीर नश्वर है, इंद्र का भी शरीर नश्वर है, फिर उसको मारने की क्यों कामना। ये भौतिक जगत है, ये माया है। तो इसीलिए ज्ञान केवल ले लेना बहुत नहीं है, उसका साक्षात्कार होना चाहिए, उसको जीवन में अपनाना चाहिए, ये आवश्यक है। तो अगर कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्रों पर प्रवचन दे देता है लेकिन जीवन में नहीं अपनाता उसको, तो उसके जीवन का कोई लाभ नहीं। वो दीति की तरह है, मारने की प्रवृत्ति बनी हुई है, खत्म करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, ज्ञान होकर भी उनके अंदर वो प्रवृत्ति है। तो इसीलिए इंद्र को मारना चाहती हूं मैं, इंद्र की हत्या करने चाहती हूं, अर्थात उनको क्रोध द्वेष उनको हो गया, इंद्र ने मेरे पुत्रों को मारा, मैं उसको मारूंगी। तो अब कैसे वो पुत्र उत्पन्न करें, उन्होंने सोचा ये तो संभव नहीं है, केवल अपनी इच्छा से तो पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कश्यप मुनि की बड़ी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, जब मैं उनको प्रसन्न करूंगी तो उस समय बड़े आराम से मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त कर सकूंगी जिसको जो इंद्र की हत्या करे। तो फिर दीति ने अपने पति की बड़ी अच्छी सेवा करनी प्रारंभ की। वर्णन है श्लोकों में कि जो भी उनको चाहिए वो ला कर देना, बड़े हंस कर मुस्करा कर उनसे बात करना, ये कम होता है ना दाम्पत्य जीवन में, पत्नियां इतनी मतलब पतियों को संभालना चाहिए कि अगर पत्नियां बड़े प्रेम से सब काम कर रही हैं, अचानक मुस्कुरा कर बात कर रही हैं तो सही है ना, गलत कह रहे हैं माता जी को, तो बहुत कम ऐसा होता है। तो कश्यप मुनि समझ नहीं पाई ये क्या हो गया, दीति अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई, लेकिन खैर उन्होंने सोचा शायद कुछ होगा, तो बड़े अच्छी तरह व्यवहार करने लगी, उनकी सेवा करने लगी, उनको अच्छे अच्छे बना कर खिलाना और जो भी बड़े अच्छे से बात करना, बड़ी अच्छी सेवा की। तो स्वाभाविक कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए ना। आजकल भी ऐसा होगा, अगर कोई पत्नी कर, आजकल नहीं होगा ना, पति समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। अचानक इतनी अच्छी हो गई, वो बुलाकर पूछ लेगा क्या चाहिए तुम्हें बताओ, ये सब मत करो। तो खैर बहुत सेवा करने लगी। दरअसल ये स्वभाव है, स्त्रियां सेवा के द्वारा नियंत्रित करती हैं। अगर वो पति को नियंत्रित करना चाहती हैं तो सेवा के द्वारा, पति थोड़ा दड़ा धमका के नियंत्रण करना चाहता है लेकिन पत्नी सेवा के द्वारा नियंत्रित करती है। जैसे हम लोग श्लोक के तात्पर्य में पढ़ रहे थे ना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा अच्छा खिलाती है पति, चारों खाने चित्त, मतलब धाराशायी हो जाता है। तो दीदी ने बहुत अच्छी सेवा की और फिर स्वाभाविक था कश्यप मुनि ने पूछ लिया कि अरे इतनी अच्छी सेवा कर रही हो, तो तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, बताओ क्या चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। अब ये भी उसकी उनकी एक गलती थी कश्यप मुनि की। ठीक है पत्नी ने सेवा की लेकिन इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए था कि वो सीधे बोल दे जो तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरा करो, पूछा भी नहीं कि क्या इच्छा है, ठीक है गलत है। तब दीति ने जब अच्छा उससे देखा कि हाँ अब ये प्रसन्न हो गए अब जो कहेंगे, तो दीति ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं एक ऐसे पुत्र को चाहती हूं जो इंद्र का वध करे, इंद्र हनम। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि इंद्र हनम शब्द का अर्थ होता है वो जो इंद्र की हत्या करे, और साथ साथ एक और अर्थ होता है वो जो इंद्र का अनुगमन करे, इंद्र के पीछे पीछे चले, वो भी इंद्र हनम कहलाता है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे पुत्र को चाहती हूं जो इंद्र की हत्या करे। अब जैसे ही कश्यप मुनि ने ये सुना वो तो आश्चर्यचकित रह गए, बोले, क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्या मांग लिया दीदी ने, और अभी अभी उन्होंने कहा था जो चाहे मांग लो। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, ये केवल भगवान को बोलना चाहिए, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए ये सब कि जो चाहे मांग लो। जैसे देवता भी कभी कभी कह देते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो कहो, क्या शक्ति है उनके अंदर कुछ देने की, और देते भी हैं तो केवल उत्पात होता है। ब्रह्मा जी ने जब जब दिया तो उत्पात हुआ केवल। तो इसीलिए उन्होंने कहा, कश्यप मुनि ने भी ऐसे ही कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो। भगवान अगर कहें तो ठीक है, क्योंकि भगवान से जो भी व्यक्ति मांगेगा चाहे सही या गलत, भगवान जिस तरह से देंगे वो सही होगा। तो कश्यप मुनि बड़ा शोक करने लगे कि ये क्या मैंने कह दिया, ये क्या कर लिया, और ये इसने क्या कह दिया। जैसे इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि अरे इसने ये तो अपने स्वभाव के अनुसार कहा, लेकिन मुझे तो बुद्धि होनी चाहिए थी, मैं कैसे इतना वश में आ गया कि मैंने इसको, क्योंकि वो जानते थे कि इंद्र ने इतना कोई बड़ा अपराध नहीं किया कि उसकी हत्या हो। ये तो स्वाभाविक है कि जब कोई आसुरी प्रवृत्तियां आएंगी बढ़ेंगी इसमें, तो किसी देवता को या किसी भगवान के अवतार को आकर उसको समाप्त करना होगा। तो ये तो कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है, अनर्थ नहीं है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इंद्र की हत्या हो, लेकिन अब ऐसे मान लिया तो अब वो सोचने लगे क्या करूं मैं, क्योंकि मैंने तो वचन दे दिया है कि तुम्हें मैं वो पुत्र जो तुम मांगोगी दूंगा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं जा सकता। दूसरी ओर मैं ऐसे पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता जो इंद्र की हत्या करे, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनको भगवान ने अधिकार दिया है कार्य करने का, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। तब इस दुविधा में वो पड़ गए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि ठीक है दोनों में से क्या उपाय है, मैं ना भी नहीं कर सकता, मैं अब दीति को नहीं बोल सकता ये सब तुमको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है, और मैं ऐसे पुत्र को भी उत्पन्न नहीं कर सकता जो इंद्र की हत्या करे। तो उन्होंने एक चीज सोचा, सुझाव क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने दीति से कहा कि ठीक है तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा लेकिन तुम्हें मैं जो कहूं वो करना होगा। तो दीति ने तो एकदम तैयार, जो बोलिए वो तैयार। तो क्या करना होगा, उन्होंने कहा एक साल तक व्रत करना होगा तुम्हें। अगर तुम एक साल तक पुम समान व्रत, इस व्रत को करोगी तो निश्चित जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी। तो अब सोचिए कि ऐसा वर क्यों दे दिया कश्यप मुनि ने इंद्र को मारने के लिए, अगर वो एक साल तक कर लेती है तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। दरअसल कश्यप मुनि चाहते थे कि ये जो व्रत है ये भगवान के प्रति किया गया व्रत है, तो कश्यप मुनि चाहते थे कि जानते थे कि अगर कोई एक साल तक लगातार भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान की पूजा आराधना इस व्रत के द्वारा करता रहे, निश्चित हृदय शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हृदय से जो बालक उत्पन्न होगा वो तो फिर मार ही नहीं सकता इंद्र को। तो उनको वैष्णव बनाने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए कश्यप मुनि ने ये व्रत को बताया कि व्रत करो, मतलब एक सुझाव दिया। तो देखिए, एक गुरु और पति दोनों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। यहां जैसे हम देखते हैं कि पत्नी ने कुछ गलत मांग लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसके आसक्ति इतनी हो कि वो जो चाहे दे दे। और गुरु को भी ऐसा ही होना चाहिए, पति गुरु के समान है, पत्नी के लिए पति को गुरु कहा गया है। यहां पर वर्णन आता है कि अगर पत्नी अपने पति की पूजा करती है, पति को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए, भगवान मानते हुए नहीं, पति भगवान नहीं है लेकिन भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए अगर वो पूजा करती है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो पति पत्नी को, पति पत्नी के संबंध में ये आवश्यक है कि पत्नी पति की पूजा भगवान का प्रतिनिधि, भगवान वासुदेव, विशेष शब्द इस्तेमाल हुआ, वासुदेव का प्रतिनिधि मानकर उनकी सेवा करे। और पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करे। तो इस तरह से ये दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। तो दीति ने मांगा और अब उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से दीति को एक व्रत बताया कि एक वर्ष तक व्रत करना है, जब आप गर्भवती हो तो इस व्रत को कीजिए। तो उन्होंने पूरा व्रत का वर्णन किया। दीति ने पूछा, बताइए क्या क्या करना है। तो उन्होंने बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया, शुद्ध रहना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और कुछ इधर उधर का खाना नहीं चाहिए, केवल भगवान को अर्पण किया खाना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। बहुत सारे नियम बताए उन्होंने, सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि गायों की, ब्राह्मणों की और भगवान की पूजा करनी चाहिए। यही चीजें ब्रह्मा जी ने देवताओं को कही थी। अगर आपको याद है, जब वृत्रासुर आक्रमण, जब अपराध हो गया, गुरु चले गए, उस समय जब देवता भागे भागे गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही थी कि इन तीन चीजों की पूजा होनी चाहिए, तीन व्यक्तियों की, गायों की, भक्तों की और भगवान की, इनकी पूजा सदैव होनी चाहिए। तो कश्यप मुनि भी उसी को कहते हैं कि अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि इस तरह से आप पूजा करते रहना। और एक विशेष उन्होंने उसमें वर्णन किया कि काली को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना। विशेष मतलब देवी देवताओं का अर्पण किया हुआ कुछ नहीं, विशेष काली, काली को क्या प्रसाद अर्पण हो, प्रसाद तो नहीं होता है वो, लेकिन लोग उसको प्रसाद मानते हैं। ये जो काली पूजा होती है उसमें काली देवी को मांस अर्पण किया जाता है, मदिरा अर्पण की जाती है, फिर उसको लोग बांट कर खाते हैं। ये तो नियम है, हमें कोई बता रहे थे कि काली पूजा में जब काली का प्रसाद होता है तो उसमें हड्डी आनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रसाद माना नहीं जाता है। बंगाल में ऐसा है, तो पता नहीं, हमें किसी ने बताया, हम रहे नहीं बंगाल में, लेकिन ऐसे माना जाता है। तो वो विशेष वर्णन किया कि काली का प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना। मतलब देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो देवी देवता हैं इनका प्रसाद भी प्रसाद है, दरअसल ये प्रसाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं। काली कौन है, चंडी कौन है? अगर हम लोग भागवत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि भगवान की शक्ति है, भगवान ने ही उनको ये सब नाम दिए। श्री कृष्ण ने, जब भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, गच्छ भद्रे ब्रजम, ब्रज में जाओ और ऐसे ऐसे करो, भगवान आदेश देते हैं और फिर उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अलग अलग नामों से जानी जाओगी, चंडी, काली, दुर्गा, वैष्णवी, कुमारी, ये सारे नाम भगवान ने दिए। तो इसीलिए वो अगर भगवान की भक्त हैं तो बिना भगवान को अर्पण किए कैसे खाएंगी वो? हम लोग नहीं खाते, वो क्यों खाएंगे? या कोई भी शिव जी को अर्पण किया जाता है तो शिव जी के सीधे खा लेंगे, शिव जी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं कि बोलो तो वैष्णवानाम यथाशंभु, इतने बड़े वैष्णव हैं तो वो कैसे खाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जब सीधे देवताओं को लगाया जाता है वो प्रसाद नहीं होता, चंडी को, देव भक्त शिव जी को, अब वो तो शिव जी के अनुयायी जो होते हैं भूत प्रेत वो लोग खा लेते हैं और फिर उसको हम लोग प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो यही प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद लेना है सही में तो नियम क्या है, जैसे हम लोग वृंदावन में जब जाते हैं ब्रज में तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर प्रसाद भगवान को अर्पण होता है पहले, विशेष करके जब हम लोग नंदग्राम जाते हैं वहाँ देखते हैं कि भगवान को अर्पण होता है, फिर वही थाली जाती है, शिव जी को अर्पण होता है फिर वो बांटा जाता है। या जगन्नाथपुरी में भी हम लोग इस नियम को देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम रखा था, क्या नाम था कोई जानते हैं, उनका नाम क्या था? बिमला प्रसाद। तो बिमला देवी हैं जिनका प्रसाद, तो उनको पहले जगन्नाथ जी को लगता है, फिर बिमला देवी को, फिर वो प्रसाद बांटा जाता है। तो ये नियम ठीक है क्योंकि वो तो फिर बड़ा आशीर्वाद हो जाता है, वो महाप्रसाद हो गया, लेकिन सीधे अर्पण करना नहीं। तो यहाँ मना किया, चंडी का प्रसाद नहीं लेना, काली का प्रसाद नहीं लेना। तो ऐसे कई नियम उन्होंने बताए कि किस तरह रहना, और साथ साथ में ये भी बताया कि सदैव स्वच्छ रहना, द्वेष नहीं करना, किसी से क्रोध नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना। और अब जब भी आप प्रसाद ग्रहण करें उसके बाद हाथ मुंह अच्छी तरह से धोना, सोने से पहले पांव धोकर सोना, कभी अपने शरीर को ठीक से ढके बिना नहीं रहना और गंदी अवस्था में नहीं रहना, संध्या के समय नहीं सोना, ऐसे बहुत से नियम दे दिए उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर ये सारे नियम आप पालन करोगे तो पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र कुमार, और कहीं अगर एक नियम तोड़ दिया तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का अनुगमन करेगा। अब सोचिए कितने नियम हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कभी ना कभी तो हो ही जाता है। खाने में भी बहुत नियम, बाहर ऐसे नहीं जाना, शरीर को ढके बिना बाहर नहीं जाना, ये भी सारे नियम बताए। तो आजकल के लिए तो स्त्रियों के लिए सुनना ही पाप है कहना चाहिए कि ये सारी चीजें ये क्या है, हम लोग तो स्वतंत्र हैं, हम लोग आधुनिक स्त्रियां हैं इत्यादि। तो ये व्रत को उन्होंने कहा और दीति ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं इसको करूंगी। तो देखिए कितनी तीव्र इच्छा थी उनके हृदय में इंद्र को मारने की, इतने कड़े नियम स्वीकार करने, उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वीकार नहीं किया इसको, किस लिए स्वीकार किया? इंद्र को मारने के लिए। ये हम लोग इस जगत में भी देखते हैं, भगवान की भक्ति के लिए लोगों को बोलिए तो वो लोग तैयार नहीं है, सुबह रोज मंगल आरती आने के लिए बोलिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन हाँ आपको कहा जाए कि फला फला दिन, बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन यहां जाकर उस देवता का सुबह 2 बजे आपको पूजा, सब लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्यों? इससे आपको ये मिलेगा, अगर ये करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान, ये तो सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन वही कहा जाएगी भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति करो, भगवान नहीं चाहिए किसी को, पुत्र में, संतान में, धन में सुखी है, भगवान नहीं चाहिए। तो यहां भी दीति इतने कड़क व्रत को करने के लिए तैयार है, केवल किस लिए? ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। तो दीति ने यह करना प्रारंभ किया, व्रत का पालन प्रारंभ किया, 1 साल तक करना था उसे। अब जब दीति ने व्रत प्रारंभ किया तो एक व्यक्ति को चिंता हो गई, इंद्र, है ना। इंद्र को, वैसे भी कोई तपस्या करता है इंद्र को चिंता हो ही जाती है, और यहां तो विशेष उसको मारने के लिए तपस्या हो रही है तो इंद्र को कैसे चिंता नहीं होगी। इंद्र हमेशा पता नहीं क्यों तपस्या के बड़े विरुद्ध हैं, विरोधी हैं, जहां कोई तपस्या करता है इंद्र या तो खुद चले जाते हैं, नहीं तो कामदेव को भेजते हैं, नहीं तो अप्सराओं को भेजते हैं कि तपस्या कोई नहीं करे, खास करके कलयुग, कलयुग में उनका काम कम है, कोई वैसे ही तपस्या नहीं करता तो उनको चिंता नहीं है, कोई ऐसे इतनी कड़ी तपस्या नहीं करने वाला। चैतन्य महाप्रभु ने सरल तपस्या दी, महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और इंद्र जानते कि लोग वो भी नहीं करने वाले, इसलिए इंद्र आराम से कलयुग में वो आराम से बैठे। पहले के युगों में उनको बड़ी चिंता, रोज उठ के चिंता करते थे कौन कहाँ तपस्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी पर नजर घुमाते थे, दिखता वहां एक ऋषि बड़ी तपस्या कर रहा है, वो ध्रुव महाराज कर रहे हैं, वो इधर ये कर रहे हैं। आजकल आराम से है वो। तो खैर इंद्र को बड़ी चिंता हो गई, तो इंद्र आए वहां पर, और दीति जब ये व्रत कर रहे थे, दीति तो उनकी मासी हुई, मासी ना है, मौसी है हाँ। तो दीति के पास आए और दीति की सेवा करने लगे, अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, दिन भर उनकी सेवा, फूल ला कर देना, फल ला कर देना, क्योंकि दीति को ये सब नियम थे कि उनको पूजा करनी है भगवान की, ऐसे करना है वैसे करना है, तो दीति करने तो सब उनके लिए जल रख कर रखना ताकि उनको कोई चिंता ना हो, बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये भी वर्णन किया गया है कि वो ध्यान रख रहे थे कि देखे नहीं, दीति को पता नहीं चले, अनडिटेक्टेड, बिल्कुल ध्यान नहीं कौन कर रहा, तो बड़े आराम से उनकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने का उद्देश्य क्या था, इंद्र इंतजार कर रहे थे कि कहीं ये गलती करे। इंद्र ने भी सारे नियम सुन लिए थे, कश्यप मुनि ने जब बताया तो सब लिस्ट थी लेकर बैठे थे और रोज देखते थे किया कि नहीं, हाँ किया कि नहीं, हाँ किया कि नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कि कहाँ ये गलती करे और मैं आक्रमण करूं, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेगी तब तक इंद्र कुछ नहीं कर सकते, तो इंतजार कर रहे थे। देखिए भगवान की भक्ति में भी ऐसा ही है, अगर हम भक्ति बड़े नियम से करते रहें, नियम पालन में करें, तब कोई देवता, कोई भगवान से विरोधी, भगवान का विरोधी या कहना चाहिए माया शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जहाँ ज़्यादातर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा रहता है, हाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भक्ति में ये याद रखना चाहिए, ट्रक वालों ने पता नहीं किसके लिए कहा लेकिन हम लोगों को याद रखना चाहिए, अगर भक्ति में हम सावधान नहीं हैं तो ये बड़ा सुंदर है। अभी आप सुनेंगे कि दीति ने क्या गलती की थी, छोटी सी गलती। तो खैर अगर हम भक्ति में सावधान नहीं है तो इंद्र इंतजार कर रहे थे कि कहां ये गलती करे और मैं आक्रमण करूं, लेकिन दीति बड़ी अच्छी तरह से जैसा बताया था कश्यप मुनि ने वैसा ही कर रही थी बड़े समय तक, और इंद्र भी अभी बेचारे इंतजार ऐसे करते करते काफी लंबा समय चला गया, एकदम सही, कोई गलती नहीं, हाथ धोना, पांव धोना, इस समय सोना, उस समय उठना, ये वो सब नियम से एक भी। इसीलिए प्रभुपाद ने भी हमें नियम दिए है ना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, ये सारे नियम पालन करते रहेंगे तो माया प्रवेश नहीं करेगी, अन्यथा माया प्रवेश कर जाती है, सावधान रहना चाहिए। तो बड़े नियम का वो पालन कर रही थी, तो बहुत समय हो गया तो इंद्र दुखी हो गए। इंद्र दुख होकर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्र दुखी होकर बोलने लगे कि हाय हाय, लगता है कि ये तो नियम तोड़ेगी नहीं और मुझे मरना ही होगा, एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा जो मुझे मारेगा, हाय ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है इत्यादि। तो जब इंद्र ऐसे विलाप करने लगे तो बहुत समय हो गया था। तो उसके बाद एक दिन वर्णन किया कि एक दिन फिर दीति ने थोड़े से नियम को तोड़ दिया। क्या नियम तोड़ा, क्योंकि बहुत समय से वो पालन कर रही थी तो कमजोर हो गई थी, बड़ा कड़ा कड़क नियम है पुंसमान व्रत, तो उसको करते करते थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो उसने एक समय खाया और खाकर इतनी शक्ति नहीं थी कि हाथ मुंह धोए, उसने नहीं धोया हाथ मुंह नहीं धोए और जाकर गलत समय पर लेट गई, जिस समय लेटना नहीं था, मना था कि इस समय नहीं सोना चाहिए संध्या के समय, वो जाकर लेट गई, थक गई थी, ऐसा होता है ना। आजकल तो ऐसा कोई नियम पालन नहीं करता, जब मन में आए सो जाते हैं, जब मन में आए उठ जाते हैं, कहीं भी जाइए उसमें कोई ये नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। दरअसल वैष्णवों के लिए नियमावली हरिभक्ति विलास में दी गई है। हरि भक्ति विलास अगर आप पढ़ेंगे, वैसे मत पढ़िएगा अभी स्थिति में, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इतने सारे नियम हैं कि आप कोई कार्य दिन में नहीं कर पाएंगे, उसमें सब नियम है, सोने के नियम, कैसे सोना चाहिए, किस तरफ सर होना चाहिए, किस तरफ पांव होना चाहिए, कैसे नहाने के नियम है, वैष्णवों को नहाना, शौच जाने के नियम है, शौच के समय किस तरफ आपका मुंह होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, नहाने के नियम है, अगर आप वो नहाने के नियम पालन करेंगे तो एक घंटे तक बाथरूम से बाहर नहीं आ सकते, इतने सारे नियम है वहां पर। तो ये सारे नियम दिए गए हैं वैष्णवों के लिए।
और वो लिखे भी सनातन गोस्वामी, हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने लिखी है। इसलिए प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, हम लोग बच गए, नहीं तो अगर प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करके बोलते सबको ये पालन करना है तो भी हम लोग कोई भक्त नहीं बनते थे हम लोग। इसीलिए प्रभुपाद जानते थे इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हरिभक्ति विलास नहीं पढ़ाना अभी इनको। तो ऐसे नियम थे, तो क्या नियम तोड़ा उसने, बस हाथ मुंह नहीं धोया खाने के बाद, ये एक नियम तोड़ दिया और सो गई गलत समय पर। इंद्र ने जैसे देखा, हाँ इंद्र तो इंतजार कर रहे थे कि इतने समय इंतजार कर रहे, अब तोड़ दिया नियम, तो तुरंत इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर दिया। उस समय वो गर्भवती थी, बालक था गर्भ में, इंद्र अपनी शक्ति से गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उन्होंने जो बालक था गर्भ में, तो अब इंद्र ने क्या सोचा, ये मेरी हत्या करने वाला है ना, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, इसको अभी मार देता हूं। तो इंद्र ने उसको उसके टुकड़े कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए वो बालक के, बेचारा गर्भ में बालक है उसको छिक 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 7 टुकड़े कर दिए। आजकल भी लोग करते हैं ना ऐसा, गर्भपात होता है, बच्चे को मार दिया जाता है। एक बार किसी ने वो फिल्म बनाई है, बहुत पहले देखा था, कि जो बालक गर्भ में रहता है जब उसको मारा जाता है या गर्भपात किया जाता है, वो डॉक्टर की कैंची या सुई अंदर जाती है, तो बालक कैसे रिएक्ट करता, पूरा फिल्म में दिखाया गया कि वो बालक है कुछ भी पता नहीं, वो तो गर्भ में है, वो क्या, लोग सोचते हैं कि कुछ जरूरत नहीं, उसको चेतना नहीं है। तो वो जैसे ही वो काटने के लिए आया, वो पीछे चला गया बचने के लिए और मुंह खोल दिया जैसे चिल्ला रहा। ये उस फिल्म में डॉक्टर ने दिखाया, कोई मतलब इस्कॉन वालों ने बनाकर जबरदस्ती नहीं लिखा ये उसको, तो बच रहा है क्योंकि बालक को चेतना होती है। तो ये जो गर्भपात है ये एक बहुत ही घृणित पाप है, कभी बालक को मारना नहीं चाहिए। और आजकल आप देखिए समाज में बहुत ये हो रहा है, और इतना तक हो गया है कि सरकार ने गर्भपात को कानूनन बना दिया कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने तक या 4 महीने तक या हमें पता नहीं कितना कि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो अभी उसको तो वो हत्या नहीं है, लेकिन वो हत्या है। मतलब सरकार ने हत्या को कानूनन बना दिया कि आप किसी की हत्या कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। और ऐसा होता है, और कितने ही लोग कर रहे हैं, भोग भोग प्रवृत्ति है, भोग करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, और इसीलिए भोग करते हैं फिर जाके गर्भपात कराते। ये मनुष्य जीवन ही नहीं है, ये प्रवृत्ति मनुष्यों की नहीं हो ही नहीं सकती, जिसमें ये प्रवृत्ति है वो केवल पशु है, पशु भी नहीं कराते, पता नहीं उनसे भी नीचे। कहां देखा आपने, देखा है किसी पशु को गर्भपात कराते हुए, उल्टा अपने बच्चों को बड़े संभाल कर रखते हैं। तो इसीलिए ये जो भावनाएं हैं, खैर इंद्र प्रवेश कर गए, उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए कि ये क्या मुझे मारेगा, मैं ही इसे मार देता हूं। और जैसे ही 7 टुकड़े किए वो 7 बालक हो गए। अरे आश्चर्य, इंद्र देख रहे ये क्या हो गया, पहले तो एक था, ये 7 लोग हैं और 7 बालक हो गए, और वो रोने लगे। तो 7 हो गए इंद्र, ये प्रभुपद उदाहरण देते कि कभी कभी हम लोग सोच सकते कि ये हो नहीं सकता, ये क्या है, एक को काटेंगे कैसे 7 हो सकता है। प्रभुपद कहते हम लोग पेड़ होता है ना, पेड़ की टहनियों को काटते हैं जाके लगा देते हैं, उससे पेड़ बन जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो अभी पेड़ की एक पेड़ से 7 टहनियों को काटिए, 7 जगह लगाइए, हमने हम लोगों ने किया है बाहर, यहाँ से पेड़ को कट करके वहाँ लगा दिया, सारे पेड़ आ गए। तो उसमें अन्य जीव प्रवेश करता है, ऐसा नहीं कि जीव कट जाता है कि एक जीव 7 भाग में कट गया, एक शरीर के 7 टुकड़े हुए उसमें 7 जीव प्रवेश कर गए। तो 7 हो गए, इंद्र बड़े घबरा गए, ये पहले एक तब 7, उन्होंने और क्रोध में आके उन 7 को काट डाला, उन 7 के 7 टुकड़े कर दिए, ठक 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 ठक, बचना नहीं चाहिए कोई भी। तो कितने हो गए, 49, 49 हिंदी में, तो 49 हो गए। और वो सब रोने लगे, अब देखिए ये सब गर्भ के अंदर हो रहा है, ये सब गर्भ के अंदर हो रहा है, इंद्र मार रहा है, काट रहा है, वो 7 हो गए, फिर 49 हो गए, और वो सब रो रहे हैं, और इंद्र को बोलने लगे सारे कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हैं आप, क्या आवश्यकता, हम तो जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो इंद्र ने जब ये सुना, अच्छा तुम तो मेरे अनुयायी हो, भाई हो, ठीक है अभी नहीं मारूंगा। फिर इंद्र ने रोक दिए, इसीलिए उनका नाम मारुत पड़ा। मारुत मतलब रुद्र, जो रोता है, रो रहे थे ना, मारुत मारुत रोना, तो रो रहे हैं, या फिर नहीं मारो, तो ऐसे मारुत बने। तो उनको फिर अब इंद्र फिर आ गए बाहर। अब दीति को तो ये सब पता नहीं था, दीति प्रायः मूर्छित सी हो गई थी। फिर जब दीति को ध्यान आया, होश आया, तो देखा कि 49 बच्चे उसके साथ में और इंद्र खड़े हैं। दीति एकदम हैरान हो गई, ये क्या है, मतलब उसने तो एक बालक की कामना की थी कि एक बालक आए, और एक नहीं 49। आप सोचिए अगर किसी माँ के ऐसे हो जाए, वो तो बेचारी शौक से मर जाएगी शायद देखकर, 49 बच्चे। वो नहीं मरी तो पिता जरूर मर जाएगा कि इनको पालने में कितना खर्चा होगा वो तो जरूर मर जाएगा देखकर। सो 49 ऐसे सारे बच्चे हैं और इंद्र खड़े। तो दीति को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो दीति ने पूछा इंद्र से कि क्या ये सब क्या है। तो फिर इंद्र ने बताया कि दरअसल इंद्र को देखकर पहले दीति ने बोला, दीति ने कहा कि दरअसल मैंने तो ये व्रत किया था एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो तुम्हें मार सके। तो ये लेकिन 49 कहाँ से आ गए 49। तो फिर इंद्र ने भी, क्योंकि दीति ने सच बोला तो इंद्र ने भी सच बोल दिया, नहीं तो इंद्र कहाँ सच बोलने वाले थे। वो तो इंद्र बोल, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए, मैं तो ऐसे घूमते घामते आ गया, आपकी स्वास्थ्य पूछने आया था, कैसे हैं आप अगर। तो जब उन्होंने सच बोला तो इंद्र ने भी सच बोला। तो इंद्र ने कहा कि दरअसल मैं बहुत समय से यहाँ पर था, आपकी सेवा कर रहा था, और मैं इनको मारना चाहता था आपके गर्भ में जाकर। तो मैंने गर्भ में जाकर इनको मारा, लेकिन ये ऐसे हो गए, और इसलिए अब मैंने इनको अपने भाई के, अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार किया है, और अब ये देवता बनेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जिस तरह भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी गर्भ में, तुम भी तो मर गए थे ना तो तुम्हारी रक्षा भगवान ने की थी जिस तरह, इसी तरह क्योंकि दीति ने पूरा एक वर्ष इतनी तपस्या की, भगवान की भक्ति की, और इसीलिए भगवान ने ये रक्षा की उनकी, तो उनको मरने नहीं दिया। तो भगवान की कृपा से, और क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई इसीलिए वो देवता बने। तो भगवान की कृपा से वो सब देवता हुए। तो इंद्र कहने लगे, आगे इंद्र कहते हैं उनको कि ये जब बता रहे थे कि मैंने इन्हें मारा, और फिर इंद्र ने कहा कि क्योंकि आपने भगवान की इतनी अच्छी भक्ति की, मैं इनको मार नहीं पाया। और फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भगवान है, अगर कोई उनकी भक्ति करता है, उसके हृदय में अगर भौतिक इच्छा भी है तो भी भगवान उसको पूरा कर देते हैं। जैसे दीति की भौतिक इच्छा थी कि ऐसे कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो भगवान, लेकिन वो एक बात कहते हैं इंद्र कि हालांकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी कोई भौतिक इच्छा नहीं करते। ये इंद्र कह रहे हैं हमें जानना चाहिए। देखिए कितनी जगहों पे हम लोग देखते हैं, ज्ञान है, अरे जब ये जानते हो कि भगवान के भक्त भौतिक इच्छा नहीं करते तो क्यों अप्सराओं को भेजते रहते हो, क्यों लोगों को तंग करते रहते हो, क्यों अपने सिंहासन के प्रति इतनी कष्ट। लेकिन इंद्र कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें कोई भौतिक इच्छा, लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा है भी तो उसको भगवान पूरा कर देते हैं। प्रभुपाद ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, कि ध्रुव महाराज, उनके अंदर भौतिक कामना थी, भगवान की उन्होंने भक्ति की तो उनके अंदर भौतिक कामना थी, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने कोई कामना नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा भगवान से, लेकिन भगवान ने फिर भी उनकी इच्छा को पूरा किया, एक राज्य दिया उनको। और इसीलिए प्रभुपद तात्पर्य में उस श्लोक को कहते हैं, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। कल परसों आपने प्रश्न किया था ना उसके विषय में, भागवतम से है वो, दूसरे स्कंद से। तो उन्होंने उस श्लोक को प्रभुपाद कोट करते हैं कि अगर किसी की इच्छा है, नहीं है, कुछ भी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इंद्र ने दीति से ये कहा कि इस तरह आपके, आपको ये जो आपने कार्य किया भगवान की भक्ति की, इसीलिए आपकी रक्षा हुई, आपके पुत्रों को मैं मार नहीं पाया, लेकिन अब ये देवताओं का स्थान लेंगे। तो दीति बहुत प्रसन्न हो गई। अब देखिए दीति प्रसन्न क्यों हुई, वो तो इंद्र को मारना चाहती थी, लेकिन यहां इंद्र नहीं मर रहे हैं, मरी नहीं रहे, उनको और 49 लोग मिल गए हेल्प करने के लिए, सेवा के लिए। तो फिर दीति प्रसन्न क्यों हुई, क्योंकि उसने एक वर्ष तक भगवान की सेवा की थी और सेवा से वो शुद्ध हो गई थी। भगवान की सेवा इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको करता है, कितने ही द्वेष को लेकर, कितने ही पापों को लेकर, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करता है तो एक दिन शुद्ध होगा निश्चित। ये फल देवी देवताओं की भक्ति में नहीं मिलता, उनकी आराधना में नहीं मिलता, क्योंकि जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं वो प्रेम से नहीं करते हैं, वो तो केवल बस एक व्यापार की तरह करते कि आप हमें ये दे दीजिए, बस उसके बाद हम दूसरे एक देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ और लेंगे, कोई प्रेम नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो प्रेम से करते हैं, और इसीलिए, और नहीं भी करते प्रेम से, इच्छाओं को लेकर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के पास आ रहे हैं। जैसे उदाहरण है अग्नि का, अगर कोई अग्नि में जानबूझकर हाथ डाले या अनजाने में हाथ डाले, अग्नि जला देती है, भगवान की भक्ति उस अग्नि के समान है। अगर हमारे इच्छाओं को लेकर भी हम जानते हैं, भगवान इच्छाओं को जला डालते हैं, वो अग्नि जला देती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर करनी है भक्ति तो भगवान की, अब ऐसे भक्ति केवल भगवान की ही हो सकती है, देवी देवताओं की नहीं। तो ऐसे दीति ने इस व्रत को किया था, इसलिए वो शुद्ध हो गई, और इंद्र से ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। फिर इंद्र उन 49 मारुतों को लेकर चले गए स्वर्ग में, कि वो अब देवताओं के स्थान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे कथा को सुनाया उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को सुनाया। और फिर उस समय जब उन्होंने इस व्रत का वर्णन कर दिया और दीति के वर्णन हो गया, तो उस समय अगले अध्याय में, 19वें अध्याय में, फिर प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने। तो उनका प्रश्न था कि आपने जो ये बताई हैं, ये व्रत का बताया है, इसको जरा विस्तार से बताइए। तो वो सोच रहे थे कि आगे आने वाले लोगों को अगर ये व्रत करना है तो उनको पता होना चाहिए क्या क्या करना है, तो उसको विस्तार से बताइए। तो फिर ये पूरा अध्याय, 19वां अध्याय जो है, उसमें केवल उस व्रत को कैसे करना है और उसमें क्या प्रार्थनाएं अर्पण करनी है, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कैसे अगर किसी स्त्री को ये व्रत का पालन करना है तो उसको पहले ये कथा मारुतों की सुननी चाहिए, ये जो इंद्र की कथा है, पहले उसको वो सुनना चाहिए सुबह में, उसके बाद व्रत का पालन एक वर्ष तक के लिए प्रारंभ करना चाहिए। और फिर उसमें अलग अलग नियम दिए गए हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मी और नारायण की पूजा, गायों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, ऐसे सारे नियम दिए गए, कौन से मंत्र का उच्चारण करें, कैसे लक्ष्मी देवी को, कैसे नारायण को, और उसमें कहा गया लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा होनी चाहिए। ये हम लोग समाज में देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं, खास करके दीपावली के दिन लोग केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी आए अच्छा है, नारायण जाए हमारे जीवन से, क्योंकि नारायण केवल सारे धन को ले लेते, हर लेते, हरी है, तो इसलिए नारायण नहीं चाहिए, लेकिन पूजा लक्ष्मी और नारायण की होनी चाहिए। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए कहा गया उस व्रत में कि कैसे उसको करना है, शुद्धता का पालन करना, थोड़ी बहुत तपस्या, ऐसे इस व्रत को उन्होंने कहा। और इस अध्याय के अंत में, 19वें अध्याय के अंत में, वो उसका लाभ भी देते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो इसको करता है उससे क्या मिलता है। हम इसको बहुत लंबा है इसलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं और फिर 19वें अध्याय को समाप्त करेंगे। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिल सकता है, कृष्ण कृष्ण। यदि अवीरा स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है, ये कुछ अच्छी बात है। जिस स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी हों उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल सकती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है।
यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को आहुति देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनाता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुदगण तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत पुंसवान व्रत का अनुष्ठान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरे कृष्ण।